समर्थ तेजी से त्रिशा के कमरे से निकलकर टेरेस की ओर चला गया। सुबह सूर्योदय हो चुका था, मौसम अच्छा था, पर समर्थ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो टेरेस पर आया और वॉल से लगकर बैठ गया। एकदम से वो फपक कर रो पड़ा। उसने आसमान की ओर देखते हुए कहा, मम्मा, आई मिस यू, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। क्या मैं किसी के प्यार के काबिल नहीं हूँ? मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है वो हमेशा मुझे क्यों छीन ली जाती है? आप भी मुझे छोड़कर चली गईं, मिस ब्यूटीफुल ने भी भाई से शादी कर ली, और अब त्रिशा, त्रिशा भी मेरे साथ नहीं रहना चाहती है। आखिर मुझ में ऐसी क्या कमी है? क्या कभी कोई मुझसे प्यार नहीं कर सकता? वो बच्चों की तरह बुरी तरह रोने लगा। उसने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया और उसके आंसू उसकी शर्ट पर गिर रहे थे। उसने अपने घुटनों में सिर छुपाते हुए अपने आप को गले लगा लिया। उसे बाकी किसी से उम्मीद नहीं थी और वो कल्याण सिंह को परेशान नहीं करना चाहता था, क्योंकि वे अक्सर बीमार रहते थे, उन्हें हार्ट प्रॉब्लम थी, और समर्थ अपनी हर छोटी छोटी परेशानी उन्हें बताएगा तो उनकी तबीयत ज़रूर बिगड़ जाएगी। इधर त्रिशा ने मीनाक्षी को कॉल किया। मीनाक्षी ने जब देखा कि उसकी लाडली बेटी उसे फ़ोन कर रही है तो उसके चेहरे पर लंबी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने कॉल उठाते ही कहा, हाँ बेटा त्रिशा, क्या तुम निकल गई वहाँ से मुझे मिलने के लिए? त्रिशा ने झल्लाते हुए कहा, नहीं मॉम, जानवी ने यहाँ सब कुछ बिगाड़ दिया है, अब मैं रावत खानदान की अकल ठिकाने लगाकर ही यहाँ से आऊँगी। आई एम रियली सॉरी, पर मैं आपको देखने नहीं आ रही हूँ, क्योंकि अगर मैं एक बार यहाँ से निकली तो मुझे नहीं लगता ये लोग मुझे यहाँ वापस आने देंगे। ये सुनकर मीनाक्षी का चेहरा मुरझा गया। वो अपनी बेटी के लिए हर हद पार कर जाती थी। बेटी के बीमार होने पर उससे मिलने नहीं आ रही है, ये जानकर एक माँ पर क्या बीती होगी शायद ही कोई अंदाज़ा लगा पाए। मीनाक्षी ने हमेशा अपने पति से भी बढ़कर अपनी बेटी को समझा है, हमेशा अपने पति से भी लड़ाइयाँ की हैं कि उसकी बेटी को कोई प्रॉब्लम ना हो, उसकी बेटी हमेशा खुश रहनी चाहिए, और यहाँ उसकी बेटी को उसकी ज़रा सी भी फ़िक्र नहीं थी। मीनाक्षी का दिल भारी हो गया था। उसने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए हाँ कहा और फ़ोन काट दिया। पास बैठे महेश ने ये देखकर मीनाक्षी के पास आकर उसे गले से लगाते हुए कहा, तभी कहते हैं बच्चों को हद से ज़्यादा छूट नहीं देनी चाहिए, तुमने उसे बिगाड़ दिया है, उसे पता ही नहीं है किसी की केयर करना किसे कहते हैं और किसी से प्यार कैसे किया जाता है, उसके हिसाब से तो सब अपने आप हो जाता है। अगर तुम पहले दिन से उसे सिखाती कि दूसरों से प्यार कैसे करते हैं तो शायद आज तुम्हें ये दिन नहीं देखना पड़ता और तुम्हें भी अपनी बेटी का प्यार मिलता। मीनाक्षी की आंखों से आंसू आ गए। उसने महेश को और टाइट गले लगाते हुए कहा, पर मैं तो चाहती हूँ बस मेरी बेटी खुश रहे, अगर वो मुझसे मिले बिना खुश है तो इसमें भी मैं खुश हूँ। हाँ, कहने को वो ये बोल सकती थी, पर वो कितनी खुश है ये तो उसकी आंखों से बहते आंसू भी बता रहे थे। इधर त्रिशा का सब्र नहीं हो रहा था, उसके अंदर जैसे खून उबल रहा था। वो तेज़ कदमों से अपने कमरे से निकलकर सीढ़ियों के जरिए हॉल में गई, जहाँ कल्याण सिंह और रजत बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। उनके सामने अखबार पड़ा था जिसे कल्याण सिंह बार बार पढ़ रहे थे। त्रिशा वहाँ गई और उनके पास वाले सोफे पर बैठते हुए बोली, दादाजी, मुझे आपसे बात करनी थी। कल्याण सिंह ने उसकी ओर देखते हुए कहा, जी बेटा, आपको क्या चाहिए, आप बेहिचक हमें बता सकती हैं। त्रिशा ने अपने दोनों हाथों की उंगलियां उलझाते हुए कहा, आपके छोटे पोते ने मेरे साथ क्या किया है ये आपको बखूबी पता होगा। ये सुनकर रजत और कल्याण सिंह दोनों की नज़रें झुक गईं। रजत ने थोड़ा आशंकित होते हुए कहा, जी बेटा, हमें पता है, अगर आप चाहती हैं उसे सज़ा मिले तो हम भी आपका साथ ज़रूर देंगे। रजत को तकलीफ़ हो रही थी, पर वो अपने बेटे के इस बाप को छुपा नहीं सकते थे। त्रिशा ने अपना गला साफ करते हुए कहा, नहीं, मैं ये नहीं चाहती कि उसे सज़ा मिले, पर वो मुझे अपनाना नहीं चाहता है। मैं चाहती हूँ वो मुझसे शादी कर ले, ताकि मेरे चरित्र से ये कलंक दूर हो जाए और मैं भी किसी की पत्नी बन जाऊँ। पढ़े लिखे समाज वाले मुझे क्या कहेंगे ये आप भी बखूबी जानते हैं। उसकी ये बात सुनकर कल्याण सिंह के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसने जल्दी से कहा, हाँ जी बेटा, इसके लिए हम पहले से तैयार हैं, अगर आप चाहती हैं समर्थ आपसे शादी कर ले तो वो ज़रूर करेगा, मैं भी देखता हूँ कैसे मना करता है। इतना बोलते हुए उन्होंने तेज़ आवाज़ में कहा, जो समर्थ तक नहीं पहुँची क्योंकि वो टेरेस पर था, पर वहाँ आते दीक्षांत के कानों तक ज़रूर पहुँच गई। दीक्षांत ने उधर आते हुए कहा, जी कल्याण सिंह जी, क्या हुआ? कल्याण सिंह ने अपनी छड़ी उठाकर दीक्षांत के पैरों पर मारते हुए कहा, वो दूसरा नालायक कहाँ है, उसे यहाँ लेकर आओ, उसकी हिम्मत कैसे हुई त्रिशा से शादी करने से मना करने की। दीक्षांत ने हैरानी से त्रिशा को देखा और फिर कल्याण सिंह की ओर देखते हुए कहा, पर उसने किस चीज़ के लिए मना किया है, वो तो आज सुबह ही आया था, थोड़ी देर पहले वो यहाँ था भी नहीं, और क्या वो तुमसे मिला था त्रिशा? त्रिशा ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, हम दोनों की काफ़ी देर तक बहस हुई है। दीक्षांत ने अपना फ़ोन निकालते हुए कहा, मैं अभी उसे फ़ोन करता हूँ। जैसे ही समर्थ का फोन बजा, उसने आंसू पोंछते हुए फोन पर फ्लैश होते हुए नाम देखा और फिर दीक्षांत का नाम देखकर चिढ़ते हुए कहा, ये कुत्ता मुझे चैन से रोने भी नहीं देता है।